भाइयों और बहनों, आपके सामने डॉक्टर सुशीला नायर को देखते हैं। आज तो उनकी डॉक्टरी वो हिंदू क्या मुसलमान क्या उनकी खिदमत में जाती है, तो परसों वो चली गई थी कुरुक्षेत्र में, तो अकेली नहीं गई थी, उनके साथ रेड क्रॉस वाले भी गए थे और रिम्स एम्बुलेंस वाले भी गए थे, उसमें हॉरिस एलेक्जेंडर था, रिचर्ड साइमंड्स था, वो सब साथ हो चली गई थी। अभी कुरुक्षेत्र में कम से कम 25,000 तो होंगे, वो करीब करीब सब हिंदू ही हैं और बड़ी परेशानी में है। आजकल वो शरणार्थियों को लेकर ट्रेन यहाँ नहीं आती है, कुरुक्षेत्र में उनको उतार लेते हैं। उसमें मतलब तो हुकूमत का यही होगा कि उन लोगों को वहाँ रखें और वहाँ भी एक कैंप बना दें, लेकिन कैंप कोई इरादा करने से ही तो बन नहीं सकती है, उसमें कुछ इंतजाम तो होना चाहिए। कोई बीमार पड़ेंगे, औरत लोग तो हैं, औरत लोगों में किसी को हमेल हो और होता है और वो पीछे बच्चा को जन्म देती है, तो उसकी तो हिफाजत होनी चाहिए। वहाँ जो लोग पड़े थे वो तो बेचारे आकाश के नीचे, और खाने पीने का तो कुछ था तो सही, लेकिन ऐसा ही वहाँ क्या हो सकता था। थोड़े तंबू इतने नहीं कि जिससे सब के सब लोग उसमें रह सके, तो वहाँ अगर औरतों के लिए एक छोटी सी भी अस्पताल बनानी है, प्रसूति गृह चलाना है, तो औरतों के लिए कुछ तो अलग तंबू होना चाहिए जिस जगह पे उनकी हिफाजत हो सके, उनके लिए नर्सिंग हो सके, उनका बच्चा की या तो बच्ची की कुछ रक्षा भी हो सके, उसको खाना भी दिया जा सकता है। ये तो सब काम ऐसे ही खुले में पड़े रहे तो मर जाएंगे, बच्चा बेचारा छोटा वो क्या कैसे जी सकता है, और जब पानी आता है तब तो पीछे हैरान हो जाते हैं, जैसे आज ही पानी तो आया। तो वो तो हुआ, मैंने आपको थोड़ा सा उनकी हालत का बयान दिया, अभी आप लोगों को मैं कैसे मना सकूंगा कि ये सब जो होता है वो होने वाला नहीं था, इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है। अगर हम लोग पागल नहीं बनते, मुसलमान पागल बन गए ऐसा मान लो, मुसलमान पागल बने इसलिए ये आते हैं, क्योंकि जो तो मैंने आपको कहा हिंदू है ना, तो हिंदू तो वहां से भागेंगे, पश्चिमी पंजाब से, बाकी दूसरा जितना पाकिस्तान में हिस्सा है उसमें, तो वहाँ से वो लोग भाग भाग कर आते हैं, तो दुख की कथा है। लेकिन वहाँ से क्यों आते हैं वो थोड़ा समझने लायक चीज़ है, कि वहाँ तो वो जालिम बने हैं ऐसा हम मान कर बैठ जाएं, लेकिन तो उसके साथ में हम भी जालिम बने, और हम बने उसके मतलब ये कि हुकूमत बन गई, लेकिन हमने हुकूमत अपने हाथों में ले ली, कानून हम अपने हाथों में ले लिया, कि चलो वो मारते हैं नौजवानों को तो हम भी मारेंगे, बूढ़ों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे, औरतों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे, बच्चों को मारते हैं तो हम भी मारेंगे, ऐसा एक हमने कानून बना लिया। मैंने तो बहुत दफा कहा है कि वो वेश्याना कानून है, वो कानून चले और साथ साथ मेरा जीवन भी चले, वो दो काम नहीं चलने जैसी है मेरे निकाह में। तो आज मेरी प्रार्थना तो ईश्वर से ये रहती है ना, हमेशा रहती थी, कि मुझको तो 125 वर्ष तक जिंदा रख, कि जिससे मैं कुछ न कुछ और भी सेवा हिंदुस्तान की कर सकूं, और हिंदुस्तान में जो खुलाई राज, उसी का नाम राम राज, उसी का नाम ईश्वरी राज, वो हूँ, तब मुझको चैन आ सकता है, तब मैं कहूँगा कहाँ हिंदुस्तान सच्चा आज़ाद बना। लेकिन आज वो तो गैब हो गया, वो राम राज्यों को तो छोड़ दो, लेकिन किसी राज्य भी नहीं रहता है। ऐसी हालत जब हो जाए तो मेरे जैसे आदमी की प्रार्थना तो क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि हे ईश्वर, तू मुझको आज क्यों नहीं उठाता है, मैं इस चीज को क्यों देखता हूँ। अगर ये नहीं है, तू चाहता है कि मुझको जिंदा रहना है, तो पीछे कम से कम वो ताकत तो मुझको दे दे कि जो ताकत मैं एक वक्त रखता था, ऐसा गुमान था कि लोगों को मैं समझा सकूंगा, लोगों के पास चला गया और उनको कहा खबरदार इस तरह से नहीं करना, तो लोग समझ जाते थे, उनके दिल में इतनी मोहब्बत थी। मैं नहीं कहूँगा कि आज कुछ मेरे लिए लोगों के दिल में मोहब्बत कम हो गई है, लेकिन कम है वह बेशी, लेकिन उसका जो अमल होना चाहिए, उसमें से जो जो परिणाम होना चाहिए, वो आज नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ जब मेरा असर चला गया, या तो वो जब हम गुलामी में थे तब तो मेरा काम चलता था, अब जब हम आज़ाद हो गए हैं तो मेरा काम नहीं चल सकता, ऐसा ही तो नहीं। जो पाठ प्रजा को मैंने उस वक्त सिखाया, मैं तो वही पाठ आज भी दे सकता हूँ, और आज तो ज़्यादा, अगर वो पाठ हम ले लें तब तो पीछे हमारा काम बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो तो मैंने आपको बीच में सुनाया, मैं कहना तो ये चाहता था आप लोगों को कि अभी जाड़े के दिन आते हैं, मेरे पास तो देखते हैं कि वो लड़कियाँ ये गर्म चादर लेकर आई है, उसको ऐसा लगा कि शायद मुझको ठंडी लगेगी, कुछ खांसी सर्दी तो है, तो पीछे वो लाई। मैंने कहा था कि उसका क्या काम है, ये चादर काफ़ी है, लेकिन वो जो वहाँ पड़े हैं, यहाँ कैंपों में पड़े हैं, यहाँ पुराने किले में मुसलमान पड़े हैं, आप कह सकते हैं कि मुसलमान को हम क्यों देखें, मैं तो ऐसे नहीं बना, मेरे लिए तो मुसलमान भी वही है, हिंदू भी वही है, सिख भी वही है, पारसी भी वही है, ईसाई भी वही है, तो पीछे मैं तो ऐसे नहीं कर सकूँगा कि इसको दो और इसको मत दो। लेकिन इन जाड़ों के दिनों में क्या होगा, अगर ये कहो कि वो तो हुकूमत का काम है, हुकूमत उनको जाड़ों के दिनों में वो कमलियाँ दे देगी, तो मैं आपको कहता हूँ कि वो हुकूमत नहीं दे सकेगी। हुकूमत कोशिश तो करे, लेकिन आज हमारे पास वो स्टॉक कहाँ है, वो कमलियाँ कहाँ से निकालेंगे, वो कोई ऐसा छूमंतर लगाना है कि उनके पास आ जाता है, ऐसा तो बनता नहीं। आज सारी पश्चिम में, यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ भी वो चीज़ें नहीं मिलती है। आज हमको वहाँ से कोई वस्त्र भेज नहीं सकते हैं, पीछे रैम के कारण कोई भेजे हमको 10-20 हज़ार कमलियाँ, इससे कोई लाखों लोग पड़े हैं ऐसे, उनको थोड़ा मिल सकता है। तब पीछे मैं आपको कहूँगा कि जितने आप लोग हैं वो सब, जितनी कमलियाँ, मैं तो ये कह तो नहीं कह सकता हूँ कि आप जाड़े को दिनों में वो सर्दी की बर्दाश्त करते रहें, और उसके साथ साथ आपको वो कमलियाँ दे रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे पास लोग ऐसे पड़े हैं कि जो अपने लिए कमलियाँ तो रखते हैं, लेकिन जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होती है, सबके पास नहीं। दिल्ली में काफ़ी गरीब बड़े हैं कि जिनको मुसीबत से कमलियाँ मिलती है, मैंने तो देखा है, मैं तो दिल्ली में रहा हूँ और जाड़े के दिन में रहा हूँ, वहाँ मैं लेता था जब हरिजन कानून में तीन सुबह में, तो उस वक्त तो मीवा बड़ा था, मुझको तो वो पता नहीं चल सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे साथ मेरा बहन भी थी। तो मेरा बहन ने मुझको पूछा कि जो हमारे जो चाकर लोग पड़े हैं उनके हाल क्या है, वो तू जानता है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरी शर्म की बात है, लाचारी की बात है, लेकिन क्या कहना चाहती है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ चली जाती हूँ, उनके हाल देख लेती हूँ, लेकिन उनके पास वो उड़ने का नहीं है। और उस वक्त बहुत ज़्यादा आता था, और इतना आपको कहीं को तो याद होगा, सबको तो नहीं, कि एक दिन तो ऐसा हो गया कि एक दिन में करोड़ों की जो जो फसल थी बर्बाद हो गई। और दिल्ली शहर वहाँ में निकला था उस वक्त, तो उस वक्त इतने वृक्ष थे, वो फल के थे और फूल के थे, वो सब मर गए। जहाँ जाओ वहाँ वो तो जब वृक्ष भी मर जाता है तो एक देखने के लायक चीज़ होती है कि आदमी को ऐसा होगा कि जैसा एक आदमी मर जाता है तो पीछे उसका चेहरा बदल जाता है, इसी तरह से वो वृक्षों का चेहरा बदल गया। सब पत्तियाँ थी वो काली हो गई और सब झुक गई। ये था, एक ही रात में इतनी शक्ति वो थी, ज़्यादा था, तो सब बर्बाद हो गया और उसमें करोड़ों का नुकसान हो गया। मेरे जिस आदमी तो उसके तो ये जो जो नख वो काले बन गए पैरों, तो डॉक्टर अंसारी जिंदा था तो उन्होंने कहा कि ये तो भी काटना होगा, ऐसा थोड़ा काटने में देने वाला था। मैंने कहा कि चलो देखेंगे, होगा तो ऐसा काला नख लेकर चलेंगे, उसमें क्या है, कोई तो नखों को काला रंगीन करते हैं और मानते हैं कि बहुत अच्छा किया है, तो मैं समझ लूँगा कि मेरे भी नख नाखून रंगीन हो गए हैं तो चला लूँगा, लेकिन आप मेरे नख काटेंगे नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा? वो तो ईश्वर की मेहर थी ना, तो वो तो नख उसके साथ साथ जब पीछे गर्मी के दिन आ गए और कुछ ठंडी चली गई और मैं वहाँ पड़ा था, दिल्ली में कुछ काम था इसलिए, तो नख अपने आप अच्छे हो गए, लेकिन ये हाल होते थे उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली में काफ़ी लोग ये ऐसे गरीब भी पड़े हैं, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो ऐसे गरीब नहीं है और जो उनके पास एक कमल से चल सकता है और उनके पास दो है तो एक मुझको दे दे। इस तरह से आप आज से देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कानून ऐसा है और रुक चलती है कि 17 अक्टूबर आ गया, उसके बाद धीरे धीरे ठंडी शुरू हो जाती है। ठंडी तो अभी शुरू हो गई है, लेकिन ये तो बर्दाश्त हो सके ऐसी है, मैं मानता हूँ, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद तो मैं तो भाई साहब के घरों में जाता था, उस जमाने में गया था, तो 17 अक्टूबर के वहाँ आग जलती थी क्योंकि वो ठंडी लगती थी, तो ऐसी ठंडी यहाँ हो जाती है। और पीछे जैसे आगे बढ़ते हैं तो नवंबर आया, दिसंबर आया, जनवरी आया, फरवरी आया, वो सब जाड़े के दिन हैं। यहाँ खुशनुमा है, जिनके पास खाना है, जिनके पास कपड़े हैं और काफ़ी पहन कर चलते हैं, बड़े बूट पहने हैं, वो मोजे पहने हैं, वो तो चल सकते हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं रहता है उनके हाल क्या होते हैं, उनका मैं तो गवाह हूँ, आप भी गवाह हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि इतना तो हम करें कि जितना हम बचा सकते हैं वो जाड़े के दिनों में पहनने के लायक कपड़े, ये भी हो सकता है कि आपके पास वो ऊनी कपड़े नहीं है, ऊनी कमलियाँ नहीं है, तो लिहाफ तो रहता है, लिहाफ काफ़ी हो जाता है, अगर अच्छा है लिहाफ रहते हैं तो आप लिहाफ भी दे सकते हैं, और यूं तो चद्दर भी रहती है जो पुराने ज़माने की मोटा कपड़ा की मोटी खद्दर की चद्दर रहती है, वो भी काफ़ी गर्म रहती है। तो कुछ भी हो, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि वो कपड़े नहीं चाहिए, कपड़े कहाँ दें, किसको दें, लेकिन ये चद्दर है, चद्दर की शक्ल में ऊन की, या तो ये लिहाफ है या तो मोटिया चद्दर पड़ी है, वो तीनों चीज तीन में से जो आपके पास आराम से बच सके इतना आप दे दें। अगर आप शुरू कर दें, अभी तो नहीं है, वो तो पीछे इंतजाम हो जाएगा कि कौन तब इसका कब्जा लेंगे। वो ऐसे तो नहीं, मैं तो कभी करने वाला नहीं हूँ कि वो चीज़ तो आ गई तो पीछे चलो सड़ने दो, उसको गोदाम में रखो और पीछे जल जाती है या तो नालायक आदमियों को मिल जाती है, ऐसे नहीं होगा। जितनी चद्दर आप देंगे, जितने ऐसे कपड़े दे देंगे, उसको मैं आपको इतना कह सकता हूँ को ठीक योग्य पुरुष योग्य स्त्री के पास जाने वाले हैं। मैं उम्मीद तो करूंगा कि आप मुझको ऐसा न कहें कि ये तो हम हिंदू के लिए देते हैं या तो सिख के लिए देते हैं, इंसान सब है। मैं तो वो भी तो ऐसी तो मुसलमानों को नहीं दे दूंगा, मुसलमानों को भी तो आज तो मुसलमान को जिंदे नहीं रहने दिए हैं, यहाँ काफी तो मर गए, काफी तो भाग गए या अपने आप या तो हमने भगा दिए, बाकी रहे हैं उनके पास तो कितनी जायदाद पड़ी है वो मुझको पता नहीं है, लेकिन आखिर में मुसलमान भरे हैं हिंदुस्तान, तो वो भी अगर भेजें और कहें कि हम तो मुसलमानों को दे देंगे तो मैं वो मुसलमानों को दे दूंगा। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने आप लोग मेरी बात सुनते हैं और दूसरे इस रेडियो के मार्फत सुनने वाले हैं वो सब मुझको परेशान न करें और कह दें कि अच्छा हमने तो ये चीज उसको कृष्णार्पण कर ली और जो लायक है उसको मिल जाएगी, इसी हमको इसी हमको उम्मीद है, ऐसा हमको विश्वास है। इतना आप करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपने बहुत ही बड़ा काम किया है। इसमें ऐसा तो न करें कि चलो अभी देखते हैं सोचते हैं, जिसको करना है वो अच्छा, ऐसा न करें कि वो टूटी फूटी निकम्मी है मेली पड़ी है वो चद्दर मुझको दे दें, उसको मैं पीछे रफू कराऊं, उसको मैं धोऊं, वो तो बन नहीं सकता है, ऐसी मुझको नहीं चाहिए। आप अगर ऐसी मेली पड़ी है तो उसको धोने की कोशिश करें, इतनी तकलीफ दें, धोबी को देने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, आराम से थोड़ा तो पानी मिल सकेगा तो उसको अच्छी करके लपेट कर पीछे दे दें तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। और कल से मेरी उम्मीद तो ऐसी रहेगी कि कोई ना कोई तो मुझको आकर देते हैं, इतने में मैं इंतजाम कर लूँगा कि किसको देना वो तो आप अखबारों में देखेंगे। आज तो अच्छा है कि एक ही बात आपको कह दूँ, दूसरी है मेरे दिल में कहने की, वो उसे कल देखा जाएगा।